Om Namo ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 10 श्लोक श्रृंखला सत्तालीस और अध्याय 8 जिसका शीर्षक है विराट रूप का दर्शन प्रदर्शन। पित्रो ना अन्वविन्देतम् कृष्णा उदार अर्बक इत्थम् गायन्ति अद्यापि कवयो यत् लोक समल अपहं। पित्रो न अन्व विन्दितम् पित्रो न अन्व विन्दितम् पित्रो न अन्वविन्देताम् कृष्ण उदार अर्बक हितम् कृष्ण उदार अर्बके हितम् कृष्ण उदार अर्बके हितम् गायन्ति अद्यापि कवयो गायन्ति अद्यापि कवयो गायन्ति अद्यापि कवयो यल्लोक समल अपहम् यल्लोक समलापहम् यल्लोक समलापहम् पित्रो नान्विदन्तेत पित्रो न अन्वविन्देतम् पित्रो न नंद विंदिता कृष्ण उदार अर्बक हितम गायन्ति यदपि कवयो यल्लोकसामलापहम् पेत्रो नान्वै विन्देतम् कृष्ण उदारार्भिकम् गायन्ति यदपि कवयो यल्लोकसामल अपहम् माता ने न नहीं अन्व विंदेताम आनंद प्राप्त किया कृष्णा कृष्ण का उदार वदान्य अर्बके हिताम उसके द्वारा संपन्न बाल लीलाएं गायंती महिमा का गान करते हुए अद्य अपि आज भी कवयो बड़े बड़े ऋषि मुनि यत् जो लोक समल अपहम लोक समल अपहम जिसके सुनने से सारे जगत का कलमश दूर हो जाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी से इतने प्रसन्न थे कि वे उनके पुत्र रूप में अवतरित हुए, किंतु वे दोनों ही कृष्ण के उदार बाल लीलाओं का आनंद नहीं उठा पाए। ये लीलाएं इतने महान हैं कि उनके कीर्तन मात्र से संसार का कलमश दूर हो जाता है, किंतु नंद महाराज तथा यशोदा ने इन लीलाओं का पूर्ण आनंद प्राप्त किया। अतएव उनकी स्थिति वसुदेव तथा देवकी से सदैव श्रेयस्तर है। तात्पर्य, कृष्ण का जन्म वस्तुतः देवकी के गर्भ से हुआ था, किंतु जन्म होते ही उन्हें माता यशोदा के घर पहुंचा दिया गया। यहां तक कि देवकी कृष्ण को अपना स्तनपान भी न कर पाया। इसलिए परीक्षित महाराज आश्चर्यचकित थे कि यशोदा तथा नंद महाराज किस तरह इतने भाग्यशाली बन सके कि उन्होंने कृष्ण की उन पूर्ण बाल लीलाओं का आनंद प्राप्त किया जिनके महिमा का गान आज भी संत पुरुष करते हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में आखिर क्या किया था कि जिससे उन्हें इतना उच्च पद प्राप्त हो सका। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सगना ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुदृशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण ये परमहंस संहिता है, वैष्णव संतों का परम धन है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज जी उन आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पावन पवित्र चरित्र का वर्णन उन चरित्रों का वर्णन करते हुए भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। जिन पवित्र लीलाओं का श्रवण हम करते आ रहे थे, जिन पवित्र और मंगल लीलाओं का श्रवण करते करते परीक्षित महाराज जी के हृदय में ऐसे जिज्ञासा उत्पन्न उठी और ये प्रश्न करते हैं, भगवान के इन सुंदर लीलाओं का श्रवण करते करते परीक्षित महाराज का हृदय अब यशोदा मैया के चरित्र पे, यशोदा मैया के भक्ति पे या यशोदा मैया का जो प्रेम है उस विषय पर, उस विषय वस्तु के ऊपर अब उनका मन पूरी तरह से लग गया। क्या है ये यशोदा मैया, इन्होंने क्या किया कि कृष्ण जो कि सारे जगत के स्वामी है, जय श्री श्री राधा गिरिधारी जी की, जय रघुनाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर निताय की, यशोदा मैया का क्या प्रेम है कि वो कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया, या कृष्ण ने यशोदा मैया को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। ऐसा नहीं है कि कृष्ण सभी को अपनी मां के रूप में स्वीकार करते हैं, ऐसा कौन नहीं है कि कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं करें। सभी चाहेंगे कि वो छोटा नन्ना सा लाला जो नीले रंग के, जिनके सुंदर गुंगराले बाल हैं, ऐसा मेरा एक लाला हो। कौन नहीं चाहेगा, कौन मां नहीं चाहेगी कि ऐसा छोटा सा बालक मेरा ही पुत्र हो जाए, मेरे घर में, मेरे आंगन में मुझसे रिश्ता रखे। इतना सुंदर बालक यशोदा मैया के भाग्य में कैसे आए। यशोदा चा महाभागा, यशोदा मैया को महाभाग्यशाली कहते हैं। क्यों? पाप यश स्तनम हरे, उन्हें मां करके पुकारते थे, मां मां। और यशोदा मैया उनके नन्हे नन्हे छोटे छोटे दांतों को उगते उगते देख रहे हैं और धीरे धीरे से वो मां मां पुकार रहे, इसका आनंद भी ले रहे हैं कृष्ण। ये आनंद यशोदा मैया को ही क्यों, देवकी को क्यों नहीं है, औरों की बात दूर। ऐसा देवकी ने, ऐसे यशोदा मैया ने क्या किया है कि उन्हीं के पास, यशोदा मैया के पास कृष्ण बच्चे बनकर जाते हैं। बार बार उन्हीं के स्तन से दूध पान क्यों कर रहे हैं, देवकी अन्य गोपियों के क्यों नहीं बार बार। तो यहां पे भक्ति का महिमा, भक्ति का शक्ति का प्रदर्शन हम देखेंगे। भक्ति में इतना शक्ति है, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, भक्ति में इतना शक्ति है जो भक्ति को शुद्ध रूप में प्रारंभ करे। शुद्ध रूप में हम भक्ति कर रहे हैं, ये शुद्ध है तब पता लगेगा जब हमारे मन के सारे कलमश दूर हो जाए, भय क्रोध काम क्लेश अग्नि हमारे हृदय के अंदर जितने भी जलन है वो दूर हो गया, तो समझ लेना चाहिए हम भक्ति में अब शुद्ध ताप को प्राप्त कर लिए हैं। भगवान का नाम अभी अच्छा शुद्ध पवित्र उच्चारण हो रहा है। क्लेशाग्नि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। और भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है, सब कुछ शुभ होने लग जाता है। और आगे भक्ति करते हैं, वो मोक्ष भी हमें, जिसे पाने के लिए लोग इस संसार में तरसते हैं, हमें इस संसार का कष्ट से दूर निकालो, बहुत हो गया ताप, बहुत हो गया कष्ट, मोक्ष चाहिए, मोक्ष भी हमें बहुत तुच्छ लगने लग जाता है। जीते जी अपार आनंद का अनुभव होता है। इतना ही नहीं, कहते हैं कि कृष्ण हमसे आकर्षित हो जाते हैं। वो कृष्ण इस भक्ति को छुपा के रखते हैं, क्योंकि अगर भक्ति अगर कोई गंभीरता से करे, तीव्रता से करे, भगवान कृष्ण विग्रह के रूप में आके हमसे बातें करेंगे। केवल वो साक्षी गोपाल बनकर उस दक्षिण भारत के ब्राह्मण से ही नहीं, अगर हमारा भक्ति शुद्ध होगा, कृष्ण हमसे बातें करेंगे और पूछेंगे क्या कर रहे हो तुम, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। केवल अर्जुन से ही पूछेंगे नहीं, कटस्त्व कस्मलम इदम, वो पूछेंगे नहीं कि ये क्या, कहां पे फंस गए तुम, अब मेरा इच्छा अब जानते हो, मेरा आज्ञा क्या है अब जानते हो, बातें करेंगे कृष्ण जगन्नाथ जी बातें करेंगे। पर ये भक्ति जो है भगवान सुदुर्लभ, यानी कि बहुत ही दुर्लभ रखते हैं, इसे प्राप्त करने के लिए भगवान इसे छूट नहीं देते हैं। यद्यपि भक्ति सरल है, फिर भी वो प्रेम भक्ति जो है भगवान सबको नहीं देते हैं, क्योंकि अगर ये प्रेम भक्ति अगर सबको मिल जाए तो भगवान अर्जुन का ही रथ नहीं, हम सबका रथ उन्हें चलाना पड़ेगा। क्यों नंद महाराज का कड़ाव कृष्ण नहीं उठाएंगे, उस प्रेम के वशीभूत होकर सबके। पर ये भक्ति जो है भगवान सबको नहीं देते हैं, उस प्रकार का ऊंचे कोटि का भक्ति का यहां पे वर्णन किया जा रहा है। परीक्षित महाराज का जिज्ञासा यह है कि नंद बाबा और यशोदा मैया ने क्या किया कि कृष्ण बार बार उन्हें मां मां करके पुकारे। कृष्ण से मां यशोदा ने पूछा, क्या आपने मिट्टी खाया, बोले नहीं 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 मैंने नहीं पिया। कृष्ण के गोप मित्र इन सब का महिमा भी ब्रह्मा जी कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप च कौशकम। ये नंद महाराज और ये गोप का क्या भाग्य है, नारद मुनि ये दृश्य देख रहे हैं कि बलराम जी सुधर्मा श्रीदाम और सुबल से कह रहे हैं पकड़ो ये लड़के को, आज तक माखन चोरी चोरी करके खा रहा था हम सबके साथ, अब इतना बदमाश हो गया कि मिट्टी खाने लग गया, और बलराम जी को डर लग गया अगर ये मिट्टी खाएगा तो मां पूछेगी ये बीमार कैसे पड़ा, और बीमार हो जाएगी बलराम जी को डांटेंगे, आपको मैं ये दायित्व दिया था कि इस लड़के का ख्याल रखो। तो बलराम जी ने कहा उठाओ इसे, और तब ये सुबल और श्रीदाम कृष्ण को खींचते हैं, कृष्ण आने के लिए तैयार नहीं, तो बोलते उठाओ इसे, उसके दोनों हाथ पकड़ते हैं और दोनों पांव पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे झूला झूलाकर कृष्ण को लेके आ रहे। ये दृश्य को देखकर आकाश के मार्ग में नंद नारद मुनि और पर्वत मुनि जा रहे थे, कहा कि धन्य हो ये गोप का धन्य हो, जिन कृष्ण का हम भजन करते हैं, उनका आरती करते हैं, उनका स्तुति गाते हैं, जिन कृष्ण को बड़े बड़े योगी तप करके हृदय में वश में लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन कृष्ण के चरण कमलों के ज्योति को पे अनेक अनेक संत लोग ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं फिर भी मिलते नहीं है, आज ये छोटे बालकों के हाथ में झूला झूल झूल के आ रहे हैं। क्या है इनके अंदर, क्या भक्ति है इनका, इनके भक्ति का, इनका प्रेम का। धन्य हो वो जो त्रिलोक के नाथ है, जगत के नाथ है, आज इनके हाथ में खेल रहा है। हम भौतिक जगत में ही अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति, अगर भारत का कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री को लो, अगर प्रधानमंत्री को हमें इधर लाना है मंदिर में, तो कितना उसके आगे पीछे उसके चापलूसी करना होगा, तब जाके प्रधानमंत्री आएगा। वो तो केवल भारत का एक छोटा प्रधानमंत्री है, पर भारत से बड़ा इस पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को ही पकड़ लो, चाहे अमेरिका के प्रधानमंत्री, उन्हें भारत में लाना है तो और कितना प्रयास करना होगा। वो तो पृथ्वी का है, पर भूलोक का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, या इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, पूरे जगत का शक्तिशाली व्यक्ति अब सुबल और श्रीराम के हाथ में झूला झूल रहा है। उन्होंने क्या किया होगा, इनके पास क्या शक्ति होगा। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज इस ब्रज बालकों का और खास करके यशोदा मैया का प्रेम का यहां पे गुणगान करें। इनका वात्सल्य रस इतना गहरा है कि ये जो कृष्ण है वो केवल त्रिलोक के नाथ नहीं है, नियंता नहीं है, एक रसिक शेखर है, रसराज है, अकेले रस अमृत मूर्ति है। वो सारे रसों का आनंद लेना चाहते हैं, पर ये वात्सल्य रस का आनंद क्यों केवल यशोदा मैया को दे रहे हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम, भगवान कृष्ण भोक्ता है, सारे रसों को भोगेंगे, पर ऐसा है तो केवल यशोदा मैया को ही क्यों मां करके स्वीकार किया। क्या है यशोदा मैया के अंदर, कितने कितने भक्त हैं जो अपने अपने घर में भगवान कृष्ण को लड्डू गोपाल करके पालते हैं, उसे अपने बालक के रूप में स्वीकार करते हैं, पर ये लड्डू गोपाल उन्हें मां मां करके पुकारते हैं। वही लड्डू गोपाल यशोदा मैया को ही मां मां करके पुकारे हैं। क्या है यशोदा मैया के अंदर कि उन्हें मां करके पुकारे। देवकी के पास भी गए थे, पर देवकी से इतने प्रेम से मां मां करके पुकारे नहीं। ये रसराज रसिक शेखर कृष्ण जो है ब्रज में विशेष रूप में भक्ति रस का आनंद कर रहे हैं, ले रहे हैं। यशोदा मैया का भक्ति का यहां पे महिमा परीक्षित महाराज कर रहे हैं। कहते हैं कि यद्यपि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी से इतने प्रसन्न थे कि उनके पुत्र के रूप में आए, पर भगवान के जो बाल लीलाएं हैं, जो अति मधुर है, जो पूरे जगत का कलमश को नाश कर सकता है, वो बाल लीलाओं का आनंद यशोदा मैया नहीं ले पाए। कृष्ण ने जब मिट्टी खाए तो मां यशोदा ने कहा, खोल मुंह खोल, क्या तूने मिट्टी खाया। तो बोला नहीं। तो क्या कृष्ण ने झूठ कहा। कृष्ण झूठ नहीं कह सकते। एक लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो कृष्ण ने मिट्टी खाया था। कृष्ण ये सोच रहे थे कि सारे भक्त बड़े प्रेम से मेरा मेरे लिए माखन निकाल रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि कब कृष्ण आए और माखन खाए। तो कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, ये तमाम प्रपदन्ते ताम प्रत्येव भजामि। तो गोपियां प्रार्थना कर रही है कि कृष्ण हमारे घर में आए माखन खाए, तो इसलिए कृष्ण जाते हैं और माखन खाते हैं। हो गया। पर मिट्टी क्यों खाए कृष्ण ने? मिट्टी इसलिए कृष्ण खाए क्योंकि कृष्ण सोचने लगे ये ब्रज का रज में क्या है, ये ब्रज का रज में क्या है वो देखना चाहते थे। कि भक्त लोग कहते हैं कि मुझे आपका चरण का धूल बनना है, ये चरण का धूल में क्या है वो देखना चाहते थे, इसका स्वाद क्या है। भक्त लोग मेरे चरण का धूल ले रहे हैं, अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरे चरण का धूल क्या है कि भक्त लोग इस चरण का धूल को ले रहे हैं। कृष्ण इस ब्रज का रज से इतना प्रेम करते हैं कि कृष्ण का एक नाम पड़ गया पांडुरंग। कृष्ण गोरे हैं या काले हैं बताइए? श्याम रंग, कृष्ण श्याम है। पर यहां पे गिरधारी गोरे कैसे हैं? सब लोग पूछते हैं क्या जवाब है इसका, क्या कृष्ण गोरे हैं, गिरधारी गोरे हैं या काले हैं? गोरे हैं कौन कहता है गोरे हैं या काले हैं? इस तरफ गोरे हैं इस तरफ काले हैं। कृष्ण गोर काले हैं ये तो शास्त्र का कथन है, इसीलिए तो कृष्ण नाम है उनका। कृष्ण अर्थ कृष्ण का अर्थ होता है जो काले हैं, तो कृष्ण काले हैं। पर वो जब भाव विभोर हो जाते हैं तो उनका रंग बदल जाता है, लाल हो जाते हैं, पीला हो जाते हैं और सफेद हो जाते हैं। बहुत ही भाव विभोर हो जाते हैं तो सफेद हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कृष्ण पांडु रंग इसलिए है, पांडु का अर्थ होता है सफेद, मराठी में बोलते हैं पांडु, पांडु रंग। तो पांडु रंग जो है वो सफेद होता है, पर ये सफेद जो है ब्रज का रज है। ये ब्रज का रज जब उड़ता है तो कृष्ण के शरीर में लग जाता है। गाय और ब्रज के गोप दौड़ते हैं नाचते हैं, और कृष्ण जब घर आते हैं तो उनका पूरा काला त्वचा जो है वो पूरा सफेद हो जाता है, पूरा सफेद हो जाता है, मिट्टी से भर जाता है। तो वही काले कृष्ण अब गोरे कृष्ण लग जाते हैं, तो इसीलिए कृष्ण काले भी हैं और गोरे भी हैं। तो ये ब्रज का रज कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं, इस रज को चखना चाहते हैं क्योंकि उनके भक्तों का चरण धूल है, यही चरण धूल को खाए कृष्ण और इसका आनंद लिए। पर आर्थिक दृष्टि से लौकिक दृष्टि से देखा जाए कि कृष्ण ने मिट्टी खाया, पर परमार्थिक दृष्टि से देखा जाए कि कृष्ण ने मिट्टी नहीं खाया। लौकिक दृष्टि से सबने देखा कि कृष्ण मिट्टी को अंदर लिया, उनके दोस्तों ने देखा, गोपों ने देखा। पर परमार्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए कि कृष्ण ने मिट्टी खाया नहीं, क्यों? क्योंकि ये सारे मिट्टी उन्हीं के अंदर है। जो खाया तो वो चीज जाता है जो हमसे अलग है। हम चपाती खाते हैं क्योंकि हम अलग है और चपाती अलग है। हम सब्जी खाते हैं क्यों? क्योंकि सब्जी अलग है और हम अलग है। पर भगवान से ये मिट्टी अलग नहीं है, जल अलग नहीं, कुछ भी अलग नहीं, सब कुछ भगवान से आया है। तो इसलिए एक परमार्थिक दृष्टि से देखा है या तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो कृष्ण ने कुछ खाया नहीं है। तो इस प्रकार से कृष्ण कहते हैं मैंने नहीं खाया। और जब कृष्ण ने मुंह खोला तो यशोदा मैया ने पूरा ब्रह्मांड को देखा, और फिर यशोदा मैया सोचने लगी कि ये बालक साधारण नहीं है। पर योग माया फिर से उसे ढक लेता है और यशोदा मैया कहता है कि नहीं नहीं ये मेरा बालक है, छोटा लड़का है, और तुरंत स्तनपान करा देता है। फिर वापस कृष्ण की ओर देख के कहता है कि हे कृष्ण ये सारे लड़के, सारे गोप्य, सारे जगत झूठे हैं और सच्चे केवल कृष्ण आप ही हो। और तब कृष्ण बड़े प्रेम से और दूध पीने लग जाते हैं और यशोदा मैया का वात्सल्य रस का आनंद लेते हैं। और यही दृश्य को देखकर यहाँ पे परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, कैसे यशोदा मैया को ये लाभ मिला है, यशोदा मैया ने क्या किया है कि इतना आनंद यशोदा मैया को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, ये ब्रज के जितने भी गोपियां हैं, ये ब्रज के जितने भी गोप हैं, यशोदा मैया, नंद महाराज और जितने भी उनके सखाए हैं, ये इतना आनंद का अनुभव कर रहे हैं, इतना आनंद का अनुभव कर रहे हैं कि कृष्ण इन लीलाओं के का आनंद लेते लेते एक समय सोचने लग जाते हैं, कौन है भगवान, कौन है भोक्ता, हु इज द एंजॉयर, वो सोचने लगते हैं, रसराज कौन है, रसिक शेखर कौन है, अरे मैं रसिक शेखर हूं, मैं रसराज हूं, पर मुझसे तो ज्यादा ये ब्रजवासी आनंदित लग रहे हैं और इन ब्रजवासियों में भी गोपियां मुझसे भी ज्यादा आनंद का अनुभव कर रहे हैं, उसमें भी श्रीमती राधा रानी सबसे ज्यादा आनंद। ब्रज लीला जैसे जैसे होने लग गई, कृष्ण सोचने लगे कि ब्रज भक्ति है क्या, मैं रसराज हूं, मैं रसिक शेखर हूं, पर मुझसे भी ज्यादा मेरे भक्त लोग आनंद का अनुभव कैसे कर रहे हैं, रसों का आनंद कैसे कर रहे हैं। तब कृष्ण सोचने लगे कि मैं, ऐसा लगता है कि भगवान या कृष्ण से ज्यादा कृष्ण के भक्त आनंद का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण, वही कृष्ण कलयुग में वापस आते हैं। भगवान कृष्ण कलयुग में आने का 6 कारण बताते हैं चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उसमें से एक कारण यह है कि कृष्ण एक देखना चाहते थे कि भक्त बनने में कितना आनंद है, भगवान जो आनंद का अनुभव कर रहा है इससे भी ज्यादा आनंद यशोदा मैया और सारे गोप ले रहे थे, तो वो सोच रहे थे कि भक्ति करके भक्त बनने में क्या आनंद है। तो ये अनुभव कृष्ण को यहाँ पे ब्रज में हुआ है। तो ये भक्ति में इतना शक्ति है कि भगवान को भी भक्त बना देता है। तो ये भक्ति का महिमा यहाँ पे हम देख रहे हैं। ये जो लीलाएं जिसका आनंद यशोदा मैया ने लिए, उसका महिमा इतना है कि परीक्षित महाराज कहते हैं कि इसका केवल वर्णन करने से बड़े बड़े संत लोग इसका आनंद लेते हैं और आज भी इसका गान करते हैं, और इतना ही नहीं, इसका जो श्रवण करते हैं वो भी इसका आनंद लेते हैं और पूरा जगत को ये लीलाएं पावन कर सकता है। कृष्ण का लीला जो है इतना महान है कि इसका जो गान करता है वो भी महान हो जाता है। यशोदा मैया कृष्ण को पकड़ते हैं, आपने माखन खाया, तो कृष्ण कहते हैं नहीं, मैंने माखन नहीं खाया, मैंने माखन नहीं खाया। तो ये लीला सुनते हैं, क्या आपने माखन खाया, तो बोलते नहीं। तो ये लीला इतने सरल लीला है, इसका एक गान एक लौकिक कवि करते हैं। ये लीला जो है कब घटी, 5000 वर्ष पहले हमारे इस पृथ्वी के समय के अनुसार 5000 वर्ष पहले कृष्ण ने मिट्टी खाया, माखन खाया। तो एक कवि गाते हैं, मैया मोरे मैंने माखन, तो माया यशोदा उसको छड़ी दिखाती है, बोल सच, क्या तूने माखन खाया, बोला मैया मैंने माखन नहीं खाया। फिर माया यशोदा बोलती है, ठीक ठीक बता, कभी बोलते खाया, कभी बोलते नहीं खाया, तो बोलते मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो, माखन खाया या नहीं खाया, मैं नहीं माखन खाया, तो बोलते नहीं खाया। फिर से बोल, फिर बोलते मैया मैंने ही माखन खाया। तो एक लौकिक कवि इसका गाना गाते हैं, ये सच्चा घटना है, आप लोग भी जानते होंगे, रास बिहारी में कला क्षेत्र है, हम भक्ति कला क्षेत्र है, नए नए जो कलाकार आते हैं, गीत गाते हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसी कला क्षेत्र में एक कवि आया था और उन्होंने ये गाना गाया था, और यही गाया, मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो, हरिदास प्रभु जानते होंगे। तो वो कला क्षेत्र में गाए, जिस समय उन्होंने ये गीत गाया, ये भजन गाए, उसके बाद वो इतने प्रसिद्ध हुए, इतने प्रसिद्ध हुए कि आज लोग बड़े बड़े, वो बहुत ही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध हो गए कि बड़े बड़े कार्यक्रम में उसे बुलाया जाता है, उसे बहुत सारा धन दिया जाता है और महान हो गया। वो महान क्यों हुआ? क्योंकि वो महान भगवान कृष्ण का महान लीलाओं का गान कर रहा था। अगर वो किसी और लौकिक बच्चे का गान करता, मैया मैंने आमूल बत्तर खायो, वो नहीं कर रहा था, मैं ब्रज का माखन खाया। अमूल का अर्थ होता है जिसका कोई मूल नहीं, वो भी जिसका कोई मूल नहीं है वैसा मक्खन मैंने खाया। पर वो लौकिक बंबई का या मीरा रोड के बच्चे का गान गाया होता तो वो महान नहीं होता, पर वो महान भगवान का महान लीलाओं का गान कर रहा था, इसलिए वो महान हो गया, प्रसिद्ध हो गए, सुप्रसिद्ध हो गए। यह है भगवान के बाल लीला, इतना आनंद प्रदान करता है इसका, केवल गाने से वो व्यक्ति महान हो गया, पर भक्ति भाव से अगर इसका स्मरण करे, इसका विचार करे, तो महान, तो महान हमारा हृदय भी शुद्ध और पवित्र, ये पूरा जगत पावन हो सकता है। भगवान ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। ब्रज का एक कवि हुए, ये जन्म से तो वो मुसलमान थे, क्योंकि उस समय मुसल राज थे, मुसलमान आया करते थे, पर वो मुसलमान था, पर किसी कारण से ब्रज के संतों के प्रति उनका आकर्षण हुआ। वे ब्रज में जाके भगवान कृष्ण के गुणगान करने लगे। इस बात का पता लग गया मुसलमानों को, तो उन्होंने उसे पकड़ा, जैसे हरिदास ठाकुर को पकड़ा था, तो पकड़ लिया, उसे कहा कि आप कवि सम्मेलन में एक कविता लिखो जिसका उसका लेख इस प्रकार होगा, तो इसका लेख इस प्रकार से है, काफिर है वो, काफिर का अर्थ होता है जो धोखा देता है, काफिर है वो जो नहीं बंदा इस्लाम के, काफिर है वो जो नहीं बंदा इस्लाम के, वो व्यक्ति जो इस्लाम को स्वीकार नहीं करते वो बंदा काफिर है, अर्थात वो धोखेबाज है, उसे मार देना चाहिए, काफिर है वो बंदा नहीं इस्लाम के। कहा कि कवि से कि आप एक लेख लिखो और उस लेख में आप ऐसा लिखो कि काफिर है वो नहीं बंदा इस लाम के। तो वो सोचने लग गया कि मैं क्या करूं, पर भगवान का अच्छा भक्त था, तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, तेषां सतत युक्ता नाम भजंताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम ताम ये नमाम उपयांति ते। तो उनको बुद्धि दिया, उन्होंने एक सुंदर कविता लिखे, भगवान के सुंदर गुंगराले बालों का वर्णन किए, भगवान के सुंदर बालों का वर्णन जब आता है तो कहते हैं उनके बाल इतने गुंगराले हैं कि उनके बाल जो है गुंगराले बाल उनके कंधे तक आते हैं।
वो बाल इतने गुंगराले ऐसे सीधे कर दे तो उनके कमर तक आए, तो पर इतने गोल गोल हो जाते हैं, तो उस बालों का महिमा गा रहे हैं। कहते हैं कि गेशु लाम देख मेरे घन श्याम के, गेशु का अर्थ होता है गुंगराले, लाम का अर्थ होता है बाल। गेशु लाम देख मेरे घन श्याम के, गेशु लाम देख मेरे घन श्याम के, काफिर है वो नहीं बंदा इस लाम के। तो सब लोग ताली बजा रहे। तो संत क्या लिख रहे हैं, काफिर है वो धोखेबाज है, वे गुनेगार है, जो भगवान के इस गुंगराले बाल के बंदा नहीं है वो काफिर है। तो मुसलमानों को क्या लगा, उनको लगा हाँ काफिर है वो नहीं बंदा इस लाम के। पर वो क्या कह रहा है, काफिर है वो नहीं बंदा इस लाम के, भगवान ने उसे इस जटिल परिस्थिति से बचा लिया। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के सुंदर सुंदर महिमा का गान करके वो अपना जान बचा लिया, भगवान ने उनको बचा दिया। इसी प्रकार से भगवान के सुंदर सुंदर लीलाओं का गान करेंगे, हम भी इस भौतिक जगत से कलमश से बच जाएंगे। आज एक महान वैष्णव आचार्य जयदेव गोस्वामी का आविर्भाव है, क्या है आज तिरुभाव है कि आविर्भाव है, तिरुभाव है, आविर्भाव तिरुभाव वैष्णव का, दोनों का एक समान महिमा है। आविर्भाव के दिन भी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम, तिरुभाव के दिन भी उत्सव मनाया जाता है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। जयदेव गोस्वामी एक रसिक आचार्य हैं, जिनके रचनाओं को गीत गोविंद को चैतन्य महाप्रभु सुना करते, दशावतार स्तोत्र इत्यादि लिखते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में है तो चंडीदास जयदेव गोस्वामी इत्यादि का कीर्तन श्रवण करते हैं, और इसमें गहरा अर्थ होता है, भगवान के गुह्य निकुंज के लीलाओं का वर्णन आता है, जिसका आनंद बड़े ऊंचे कोटि के संत लोग लेते हैं। तो ये जयदेव गोस्वामी पाद का जो महिमा है, उनका लीला जो है, उनका दिव्य जन्म, इनका दिव्य कर्म, जैसे जन्म कर्म च दिव्य है, बहुत ही दिव्य है, पर वो एक सरल जीवन व्यतीत करते थे। जयदेव गोस्वामी ऋतु दीप करके एक द्वीप आता है, जो नवद्वीप मंडल परिक्रमा करते हैं तो ऋतु दीप करके एक द्वीप, ऋतु यानी कि छह ऋतु होते हैं, सिक्स सीजन के ऋतु होते हैं, अलग अलग प्रकार के सीजन, गर्मी ठंडी बारिश ये सब होते हैं, शरद ऋतु ये सब ऋतु होते हैं। तो ऋतु दीप एक द्वीप है जहां पे जयदेव गोस्वामी आए थे, और वहां पे एक कुटिया में उन्होंने ये गीत गोविंद लिखे थे। ये गीत गोविंद जो है इतने प्रसिद्ध हो गया, इतने विख्यात हो गए, और ये जयदेव गोस्वामी इतने बड़े संत हैं कि उस नदिया, इस नदिया प्रांत का जो राजा था उसका नाम था लक्ष्मण सेन, वो भी एक भक्त स्वभाव का था, तो लक्ष्मण सेन तुरंत कहा कि मेरे राज्य में एक महान संत आया है तो मैं उनका स्वागत करूंगा, और कहा कि ये गीत गोविंद भगवान का गीत जो है आप कृपा करके मेरे सभा में मेरे महल में सुनाइए। तो जयदेव गोस्वामी राजा से कहा, हे राजन, सरलता देखिए, कहा कि हे राजन आपका ये प्रस्ताव मैं सिर पे धारण करता हूं, सिरधारी है, पर मैं भगवान का गुणगान कर रहा हूं, और ये गुणगान मैं अकेले में अपने भगवान का करूंगा, आपके राज्य में आपके सभा में मैं नहीं करूंगा, और राजन अगर आप ऐसा प्रस्ताव या जोर जबरदस्ती करोगे तो मैं आपके इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा, मैं ये भगवान का गुणगान लौकिक लोगों के पास, भौतिकवादी लोगों के पास नहीं करूंगा। राजा लक्ष्मण सेन वो भी संत था, वो समझ गया, तो वो भक्त था, तो कहा कि जयदेव गोस्वामी जैसे संत हमारे राज्य में है इसी से हमारा राज्य पावन होगा, पवित्र होगा, किसी भी हालत में इस संत को मैं जाने नहीं दूंगा। तो उन्होंने जबरदस्ती नहीं किया। फिर से लक्ष्मण सेन आए, कहा कि जय देव गोस्वामी मेरा परीक्षा लेता होगा। फिर से प्रस्ताव रखा, फिर से कहा कि नहीं, देखिए राजा के राज दरबार में आना कितनी बड़ी बात होता है। कोई लौकिक साधारण लोग को बोले तो नाचने लगेगा, आज मुझे राजा के दरबार में आने का मौका मिला, वो फोटो ले लेगा, फेसबुक में, इंटरनेट में, व्हाट्सएप में डाल देगा, बोला ये देखो राजा के दरबार में मैं आ गया, मैं अभी कितना महान हूं। पर लक्ष्मण सेन इन बातों को नहीं मानता था। यह है सरलता उनका भक्ति का। अब जयदेव गोस्वामी पर लक्ष्मण सेन ने क्या किया, एक कुटिया बनाया गंगा के तट पर, एक कुटिया बनाया और उस कुटिया में उनको रहने के लिए दिया। और वहां पे एक दिन की बात है, वो गीत गोविंद लिखते हैं। ये गीत गोविंद लिखते 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 एक पद आता है गीत गोविंद में। गीत गोविंद में एक पद आता है जिस पद का अर्थ यह है कि राधा रानी कृष्ण से रूठ जाती है और कृष्ण राधा रानी को मनाने लगती है, और मनाने के मनाते मनाते कृष्ण किसी भी प्रकार से मानने के लिए तैयार नहीं। अंत में कृष्ण जो है राधा रानी के लिए एक सिंहासन बनाते हैं फूलों का, उस सिंहासन में राधा रानी को बिठाते हैं और राधा रानी के चरण के सामने बैठ जाते हैं और राधा रानी के चरण कमलों को अपने दोनों हाथों से उठाते हैं और अपने मस्तक पर, अपने मस्तक को जमीन पर लगाते हुए राधा रानी के दोनों चरणों को अपने मस्तक पर लगाते हैं। तो ये लगाते ही जयदेव गोस्वामी के हाथ कांपने लगे और उनका जो कलम था, मोर पंख था, जो भी था, वो रुक गया और वो काट दिया और कहा कि उनकी पत्नी से कहा, हे पद्मावती देखो अब मैं थोड़ा स्नान करके आऊंगा गंगा में और थोड़ी देर में आप प्रसाद भगवान को भोग लगा लेना और हम बाद में प्रसाद पाएंगे। तो गए तो पद्मावती यहाँ पे परोसने भगवान को भोजन बनाने लगी। फिर जयदेव गोस्वामी वापस आए पर वो आश्चर्यचकित हो गए कि पद्मावती प्रसाद पा रही थी। तब जयदेव गोस्वामी ने पूछा, वो आश्चर्यचकित हुए, कुछ बोले नहीं और उनके सामने बैठ गए। तो पद्मावती देख के पूछने लगी, आप ऐसे घुर घुर के क्यों देख रहे हो? ने कहा, कुछ बात नहीं ऐसी। तो बोला, इतने घुर घुर के क्यों देख रही हो? तो बोला कि मैं आज तक तुम्हें मुझसे पहले प्रसाद पाते हुए देखा नहीं। तो पद्मावती आश्चर्यचकित हो गई, क्या? तो बोला, स्वामी जी क्या बोल रहे हो आप? तो बोले, हाँ मैं भूखा हूं, मैंने अब तक प्रसाद नहीं पाया। अभी अभी तो आप प्रसाद पाए। नहीं मैं अभी अभी स्नान करके आया। नहीं अभी आप तो अभी। तो बोला, नहीं। पद्मावती ने कहा, नहीं मैंने भोग लगाया और आप आए और आने के बाद क्या किए? आप उस कमरे में गए और आप कुछ लिखे और हंसते हंसते वापस आए और जब मैंने परोसा तो आपने बड़े प्रेम से इसे पाया और इसके बाद मैं आपका झूठन ले रही हूं। तब जयदेव गोस्वामी जो है थोड़ी देर सोचने लगे क्या हो रहा है और तुरंत उस कमरे में गया जहां पे वो लेख लिख रहा था। फिर देखा उस पन्ने को खोलकर वहां पे देखा कि उन्होंने जिस बातों को काटे थे उस बातों को फिर से रद्द कर दिया और भगवान कृष्ण फिर से लिखते हैं कि सच में ऐसा एक घटना ब्रज में घटी जब राधा रानी पूरी तरह से रूठ गई थी और कृष्ण अपने मस्तक को जमीन में लगाए और दोनों हाथ से राधा रानी के चरण कमलों को उठाए और कृष्ण के चरण कमल में लगाए। ये बात सत्य है और इसे पूरी तरह से लिख देते हैं। इस बात को देखकर जयदेव गोस्वामी जो है नाचने लग जाते हैं और पद्मावती के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, धन्य हो धन्य हो, जिस भगवान का मैं भजन कर रहा हूं उस भगवान आपके पास साक्षात आए और आपके बनाए हुआ भोग प्रसाद को स्वीकार किया, हे पद्मावती आप धन्य हो। अब पद्मावती इस बात को सुनकर वो रोने लगी और आश्चर्यचकित, वो बेहोश हो गए। पद्मावती को बेहोश देखकर जयदेव गोस्वामी बेहोश हो गए। इस प्रकार से सुंदर गीत गोविंद जो है, इसका रचना ये महान संत करते हैं, जिनका हृदय इतना पवित्र है, इतना भगवान में लगा हुआ है कि भगवान उनको ऐसे ऐसे सुंदर बुद्धि देते हैं जिससे ये लीलाएं वो लिख रहे हैं। ये गीत गोविंद इतना महान है, इतना महान है कि जगन्नाथ जी रात को सोते नहीं है जब तक गीत गोविंद नहीं सुनाया जाए। जगन्नाथपुरी में एक घटना ऐसा घटी कि जगन्नाथ जी भाग गए और अगले दिन जब आए तो सब लोग ने पूछा कहां गए, तो बोला मैं गीत गोविंद सुनने गया। तो एक राजा ने तुरंत हुक्म दिया कि रोज रात को गीत गोविंद सुनाया जाएगा। फिर भी जगन्नाथ जी सोते नहीं थे। फिर राजा ने यह हुक्म दिया कि गीत गोविंद का चद्दर जो है, जैसे हम लोग हरे कृष्ण हरिनाम चद्दर पहनते, तो गीत गोविंद का चद्दर जगन्नाथ जी को जब लगाया जाता है तो जगन्नाथ जी बड़े प्रेम से गीत गोविंद का चद्दर ओढ़कर फिर बाद में ही उनका शयन होता है। तब से लेके आज तक गीत गोविंद का चद्दर जगन्नाथ जी को अर्पण किया जाता है। ये समझने की बात यह है कि कितना भक्ति होगा, कितना प्रेम होगा जयदेव गोस्वामी के अंदर कि जगन्नाथ जी उनके गीत को स्वीकार करते हैं और उनसे ओढ़ते हैं। आज उनका स्मरण करते हुए इस लीलाओं का स्मरण करते रहेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि आपके अंदर जो भक्ति है उस भक्ति का एक बिंदु अगर मिल जाए तो हमारा जीवन के लिए काफी होगा, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जिस प्रकार का भक्ति का वर्णन यशोदा मैया के अंदर है उसी प्रकार का भक्ति जयदेव गोस्वामी में भी पाया जाता है, और उसी प्रकार का भक्ति का बिंदु एक मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील जयदेव गोस्वामी की, श्रील प्रभुपाद की जय। हरि प्रेमानंद।